ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंध 4 अध्याय 28 श्लोक 9। कामान अभिलषान दीनः यातयामान च कन्यया विगत आत्मगते स्नेह पुत्रदारान च लालयन। कामान अभिलषन दीनो कामान अभिलषन दीनो यातयामांश्च कन्यया यातयामांश्च कन्यया विगतात्मगतिस्नेह पुत्रदारांश लालयन। कामानभिलषन् दीनो यातयामांश्च कन्यया विगतात्मगतिस्नेह पुत्रदारांश्च लालयन्। कामानभिलषन् दीनो यातयामांश्च कन्यया विगतात्मगतिस्नेह पुत्रदारांश्च लालयन्। कामान सुख के साधन, अभिलषन अभिलाषा करते हुए, दीन बेचारा, यातयामान वासी च भी कन्या काल कन्या के प्रभाव से, विगत खोया हुआ आत्मगति जीवन का असली लक्ष्य, स्नेह आसक्ति पुत्र पुत्रों दारान पत्नी च तथा लालयन दुलारते हुए। माता जी लोग और आगे बढ़ जाइए, आगे काफ़ी जगह है, पीछे भ्रम हो रहा है कि जगह का अभाव है या वहीं से कोई इधर बतला दें। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, काल कन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई थी। अपनी कामेच्छाओं के बने रहने के कारण राजा पुरंजन अत्यंत दीन बन चुका था। उसे अपने जीवन लक्ष्य का भी पता न था। वह अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अत्यंत आसक्त था और उनके पालन के संबंध में चिंतित था। तात्पर्य, आजकल की सभ्यता की यह सही सही स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर घर तथा परिवार के पालन में लगा हुआ है। फलतः प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में भ्रमित हो जाता है और उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता में भला आध्यात्मिक जीवन कैसे चल सकता है, क्योंकि मनुष्य केवल इस जीवन के विषय में सोचता रहता है। यद्यपि अगला जीवन एक तथ्य है किंतु उसे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग पुरंजन के विषय में पढ़ रहे हैं। काफी दिन से यह प्रसंग चल रहा है। वैसे कार्तिक महीना है तो बहुत लोग ऐसे भी उपस्थित हैं जो पहले से इस कथा को नहीं सुने हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग इस कथा के विषय में जानते हैं। पुरंजन का इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो ये हम लोगों का अपना ही इतिहास है। पुरंजन जीवात्मा ही है, इसी के दुर्दशा के इतिहास को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। नारद जी प्राचीन बरही को उपदेश दे रहे हैं क्योंकि प्राचीन बरही अतिशय आसक्त थे, कर्मकांड में आसक्त थे। नारद जी सीधे उनको उपदेश दे सकते थे, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी डायरेक्ट उपदेश देने के बदले इनडायरेक्ट में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कहना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। एक प्रश्न उठाया गया है प्रारंभ में ही कि जब उपदेश ही देना है नारद जी सीधे क्यों नहीं उपदेश दे रहे, और इसके कारण में यही लिखा गया है कि जब व्यक्ति किसी बात को अपने से रियलाइज करता है तो उसका प्रभाव दूसरा होता है। और कहीं कहीं थोड़ा कोई बात ढक करके कहने से उसकी शोभा भी बढ़ती है। ऐसे इस प्रसंग में ये बात याद आ जाती है, एक संत के मुख से सुना कि तीन चीज है को आधा ढक करके रखने से वो ज़्यादा अधिक शोभित होता है। ढाके से सोहे नहीं, देत उघार कुरूप। कि कोई कोई चीज है कि पूरा ढक दीजिए तो अच्छा नहीं लगता है, और पूरा उसको निरावृत कर दीजिए तो वह भद्दा हो जाता है। और तीन चीज का उदाहरण दे रहे हैं कि आधा ढाके सोहत है, कभी अक्षर कवि अक्षर कुछ केस। कोई कवि है अपने कविता को थोड़ा ढक करके, थोड़ा रहस्य बात डाल करके लिखता है तो अधिक शोभा देता है। अब इसी बात को समझाने के लिए दो उदाहरण दे रहे हैं कि जो स्त्रियों का केस है तो उसको पूरा ढक देने से उतना अच्छा नहीं लगता, और पूरा उसको खुला रखिए वो भी बहुत भद्दा हो जाता है। आधा ढाक करके रखने से, ऐसे ढाक करके रखने से कि थोड़ा थोड़ा दिखाई दे तो अच्छा लगता है। और दूसरा भी उदाहरण स्त्रियों से ही है, उनके स्तन के विषय में। और कथा को एक रूपक के उपदेश को अपने एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और यह कभी कभी ज़्यादा प्रभावशाली भी होता है और भगवान को भी ये पसंद पड़ता है। श्रीमद् भागवतम में ही उल्लेख आया है कि परोक्ष प्रिय, भगवान का एक गुण दिया गया है कि उनको परोक्ष बहुत प्रिय है। और ज्ञान का सबसे बड़ा जो भंडार है वेद, वहां भी परोक्षवाद का ही अवलंबन लिया गया है। अब पुरंजन की जो कथा है, जीवात्मा की कथा है, अपनी दुर्दशा की कथा है, और इस क्रम में आप लोग बहुत सारी बातें सुन चुके हैं। यहाँ काल कन्या का वर्णन चल रहा है। काल कन्या, काल कन्या को परमिशन मिल गया कि तुमको कोई पसंद नहीं करता है और तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा, लेकिन तुमको हम ये अधिकार देते हैं कि तुम सेना ले लो और जहाँ इच्छा हो वहाँ तुम भोग करो, जिस नगर पर आक्रमण करना हो उस नगर पर आक्रमण कर दो। आत्मानम कन्यया ग्रस्तम पंचा नरिदूषिता दुरंत चिंता मापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रिया। पहले आप राजा पुरंजन के विषय में पढ़ चुके हैं, वह बुद्धि को प्राप्त करके, प्रमदा को प्राप्त करके बहुत भोग में लगा हुआ था। अब उसको रात दिन का पता नहीं चल रहा था, लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि काल कन्या ज्वर के साथ थी और उसके जो सैनिक थे वे विचरण करने लगे, इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। त एकदा तु रभसा पुरंजन पुरीम नृप रुर्धि भौम भोगाढ़ जरत पन्नग पालिता। सैनिक काल कन्या के साथ और प्रज्वार के साथ पुरंजन पुरी पर आक्रमण किए, इसको घेर लिए। पुरंजन पुरी मतलब शरीर का वर्णन पहले ही आ चुका है कि पुरंजन बहुत भ्रमण किया, लेकिन हिमालय के दक्षिण में एक नगर उसको पसंद पड़ा। उस नगर का परिचय दे रहे हैं कि जिस नगर में 9 गेट है, 9 दरवाजा है, मनुष्य देह उसको पसंद पड़ा था, इसमें भोग कर रहा था। कह रहे हैं कि रुर्धो भौम भोगाढ़्याम, ये जो नगरी है यह भोग से समृद्ध है, तो इस पुरंजन के नगरी पर रभसा बलात् आक्रमण कर दी और सेना घेर ली। और इस नगर के विषय में कह रहे हैं कि जरत पन्नग पालिता, इसका पालन एक सर्प कर रहा है, सांस से इसका पालन कर रहे हैं। बहुत दिन से, जब से जन्म हुआ है तब से सांस चल रहा है कि पुराना सर्प इसका पालन कर रहा है। सर्प पालन कर रहा है लेकिन सेना उस पर आक्रमण कर दी। और काल कन्या पे बुझे पुरंजन पुरम बलात्, अब जबरदस्ती बलपूर्वक आक्रमण कर दी, भोग करने लगी काल कन्या। अब इसे काल कन्या के विषय में कह रहे हैं कि यया विभूत पुरुष सद्यो निसारता मियात। जब काल कन्या का मतलब बुढ़ापे का आक्रमण हो जाता है तो व्यक्ति तुरंत निःसारता को प्राप्त हो जाता है, उसका सार तत्व समाप्त हो जाता है। तयोपभोज्यमाना नाम वै जवना सर्वतो दिशम द्वार भी प्रविश्य सुभृशम परदयन सकलाम पुरी। अब सेना इस नगर पर सब तरह से आक्रमण की, चारों तरफ से घेर ली और दरवाजे से घुस करके इसका मर्दन प्रारंभ कर दी, इसको कुचलने लगी, रौंदने लगी। तस्याम प्रपीड्यमानायाम अभिमानी पुरंजय अवापोरु विधान स्थापन कुटुम्बी ममता कुल। अब नारद जी कह रहे हैं कि जब पुरंजन के नगरी पर काल कन्या का आक्रमण हो गया और उसका शक्ति समाप्त हो गया, सार समाप्त हो गया और सेना सब तरह से रौंदने लगी। तो तस्याम प्रपीड्यमानायम अभिमानी पुरंजन, शरीर का जो अभिमानी है, जो शरीर को अपना मानता है, जो राजा है, तो अवापोर विधान स्थापन वो विविध प्रकार का दुख प्राप्त करने लगा। भी शरीर तो जड़ है, इसको रौंदा भी जा रहा है तो वो क्यों दुख पा रहा है? तो कह रहे कुटुंबी ममता कुल, दुख का कारण है कि वह परिवार वाला है, परिवार में उसका अभिनिवेश है, और ममता कुल दुख का मुख्य कारण है कि शरीर में मम बुद्धि है, शरीर को अपना मानता है, और इसलिए वह बहुत दुखी हुआ। और कन्योपगूढ़ो नष्ट श्री कृपणो विषयात्मक नष्ट प्रज्ञो हृतेश्वर ज गंधर्व जवने बलात्। अब तो जब काल कन्या का आक्रमण हुआ, बुढ़ापा का आक्रमण हुआ, तो बहुत दुखी हो गया और उसका विवेक भी समाप्त हो गया और वह देखने लगा कि हमारी पूरी, हमारी नगरी तो बिल्कुल जीर्ण फीर्ण हो गई, तहस नहस हो गई, और देख रहा है कि आत्मानम कन्या ग्रस्तम पंचालन दूषिता दुरंत चिंता मापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रिया। कि जब काल कन्या से, बुढ़ापा से अपने को अभिभूत देखा, तो दुरंतम चिंता आपन्न, उसको बहुत भारी चिंता हो गई, बहुत भारी चिंता में पड़ गया। लेकिन न लेभे तत् प्रतिक्रिया, चिंता तो बहुत कर रहा था, बहुत विचार कर रहा था, लेकिन अब बुढ़ापा का, काल कन्या का कोई प्रतिक्रिया, कोई रेक्टिफिकेशन, उसका निवारण नहीं प्राप्त किया। एक काल का ऐसा प्रभाव है कि इससे हम बच नहीं सकते, और काल का परिचय ही दिया गया है कि ऐसा सर्व निराकृति, काल का स्वभाव है कि सबके सेप को बिगाड़ता रहता है, सेप को पहले जैसा नहीं रहने देगा। अब इस विषय में बहुत भाषण करने की जरूरत नहीं है, ये तो सबका अनुभव है। अभी लोग एल्बम में फोटो रखते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ। कोई बिल्डिंग खड़ा होता है और उसका उद्घाटन करते हैं, फूल से सजाते हैं, फिस्ट देते हैं, कितने लोग जुटते हैं, और इसके बाद काल का ऐसा प्रभाव होता है कि कुछ दिन के बाद लिख देते हैं परित्यक्त, लिख देते हैं, वहाँ जाने में भी खतरा है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। और काल का स्वभाव ही है कि रूप को बदलता रहता है, उसको बिगाड़ता रहता है, और इसके निवारण का कोई उपाय नहीं है, आज तक कोई उपाय नहीं बनाया। चाहे वह कोई देश हो, कोई समय हो, काल के प्रभाव से व्यक्ति नहीं बच सकता। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसिद्ध आख्यान है, एक घटना है, कथा है, जब विदुर जी तीर्थ यात्रा के बाद हस्तिनापुर लौटे और धृतराष्ट्र को समझाने लगे। आप विदुर जी के विषय में जानते हैं कि विदुर जी धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं, और विदुर जी बहुत ही सदाचारी व्यक्ति हैं, उनका स्वभाव बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवतम में उनके स्वभाव के विषय में लिखा गया है कि जब मैत्रेय ऋषि से मिले, मैत्रेय ऋषि उनके स्वभाव से ही तृप्त हो गए। और विदुर जी बहुत सुंदर स्वभाव के व्यक्ति हैं, अपने अग्रज का बहुत सम्मान करते थे, बड़े भाई हैं और उनके पास वे प्रायः जाया करते थे। लेकिन धृतराष्ट्र जब पांडवों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करने लगे तो विदुर जी को यह पसंद नहीं पड़ा। और जब धृतराष्ट्र भगवान का अपमान कर दिए, भले ही अपने बड़े भाई हैं धृतराष्ट्र, लेकिन विदुर जी उनके यहाँ जाना छोड़ दिए। ऐसा सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में वर्णन किए हैं कि यदा तु राजा स्वसुता न साधुन पुष्णन न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान विबंधुन प्रवेश लाक्षा भवने ददा। विदुर जी बहुत सम्मान करते थे धृतराष्ट्र का, लेकिन कई एक ऐसी घटना हो गई कि अपने व्यवहार को बदल दिए। और कई एक घटनाओं का उल्लेख सुखदेव गोस्वामी किए हैं और कह रहे हैं कि विनष्ट दृष्टि, धृतराष्ट्र की स्थिति है कि जन्म से ही अंधे हैं, लेकिन अपने पुत्रों के स्नेह में पड़ करके उनका विवेक भी समाप्त हो गया। विनष्ट दृष्टि, विनष्ट दृष्टि, और दो आँख है व्यक्ति को, और जिस व्यक्ति को ये दो आँख नहीं है उसको भी एक तीसरी दृष्टि होती है, वो विवेक की दृष्टि है। लेकिन धृतराष्ट्र के विषय में कह रहे हैं कि विनष्ट दृष्टि, उसके जो विवेक की दृष्टि है वो भी नष्ट हो गई। अब यह दृष्टि नष्ट हो गई, पुष्णन न धर्मेण असाधुन स्वसुतान, धृतराष्ट्र की यह स्थिति हो गई कि अपने पुत्रों का अधर्म पूर्वक पालन करने लगे। एक तो उनके पुत्र निसर्ग से ही, स्वभाव से ही असाधु हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, और धृतराष्ट्र के भी दृष्टि नष्ट हो गई, विवेक नष्ट हो गया, तो वे अपने पुत्रों का अधर्म पूर्वक पालन करने लगे। वे स्नेह में बंध करके अपने पुत्रों का पालन कर रहे हैं तो इसको तो सहन भी किया जा सकता है। उनकी यह स्थिति हो गई कि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान विबंधुन प्रवेश लाक्षा भवने ददा। भ्रातुर्यविष्टस्य, छोटे भाई के पुत्र हैं, और विबंधुन, उनके पिताजी नहीं जीवित हैं। सामान्य रूप से कर्तव्य यह होना चाहिए कि भाई हमारे भाई के पुत्र हैं, पिता की मृत्यु हो गई तो कुछ अधिक ही स्नेह देना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र की यह स्थिति है कि प्रवेश लाक्षा भवने ददा, जिनके पिता नहीं है, जिनके रक्षक नहीं है, अपने भाई के पुत्रों को लाक्षा भवन में प्रवेश करा करके रह करके जला दिया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ददाह, जला दिया। वे एक प्रश्न करेंगे कि जलाए तो नहीं, धृतराष्ट्र तो नहीं जलाए और पांडव लोग जले नहीं, और क्यों ददाह कह रहे हैं? इसका आशय यह है कि यद्यपि धृतराष्ट्र जलाए नहीं, आग नहीं लगाए, लेकिन आग लगाने की योजना पूरा कर चुके थे, और इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ददाह, और वास्तव में उन पर जलाने का पाप लगा। वे पूरी तैयारी कर चुके थे, उनको जलाना ही था, यह तो युधिष्ठिर महाराज का विवेक काम किया या विदुर जी के मंत्रणा से वे बच गए। धृतराष्ट्र के तरफ से पूरी तैयारी थी। धृतराष्ट्र जब लाक्षा भवन का निर्माण कर रहे थे और युधिष्ठिर महाराज को ये बात पता चल गई थी, युधिष्ठिर महाराज को जब युवराज पद दिया गया और युधिष्ठिर महाराज की लोकप्रियता बढ़ने लगी, दुर्योधन बहुत चिंतित हो गया। और वह अपने पिताजी से कहने लगा कि यह तो आप बहुत भारी भूल कर दिए, जो राज पद दे दिए और जैसे युधिष्ठिर की लोकप्रियता बढ़ रही है और फिर इसको आप राज्य से वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके बहुत सपोर्टर हो जाएंगे, बहुत समर्थक हो जाएंगे, उसको दबा देना बहुत कठिन कार्य होगा। अब धृतराष्ट्र उपाय सोचा, एक अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ से घर का निर्माण किया। आप महाभारत पढ़ेंगे तो लाक्षा भवन कैसे बनाया जा रहा है उसका वर्णन किया गया है कि सन जानते हैं, जूट आप लोग कहेंगे, वो जूट को घी में ऐसे बोर करके और भिंगो करके और दीवाल में सटाया जाता था, और दीवाल भी राल का बना था जो एकदम जलने वाले पदार्थ हैं, और ऊपर से सन को जूट को घी में बोर करके उसको भिंगो करके और दीवाल में सटाते थे कि तुरंत सब जगह आग लग जाए। और युधिष्ठिर महाराज को यह पता चल गया। युधिष्ठिर महाराज एक दिन कहे कि हम लोगों को जो वारणावत में भेजा जा रहा है तो हम लोगों को मारने के लिए भेजा जा रहा है, और भीमसेन तुरंत विद्रोह कर दिए कि मारने के लिए भेजा जा रहा है तो क्यों हम लोग जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझाए कि देखो, जिसके मारने का नियत है तो कोई ना कोई उपाय करेगा, तो उससे यदि हम लोग दूर रहेंगे तो शायद बच सकते हैं, नज़दीक रहने पर तो ज़्यादा खतरा है ना, यहाँ रहेंगे अवसर पा करके भोजन में ही विष दे देंगे, ओ आसानी से मृत्यु हो जाएगी। एक बार की घटना हो चुकी थी, भीम को विष दिया गया था, और युधिष्ठिर महाराज जानते हुए भी और उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। भीम नहीं चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझाए कि वहाँ हम लोग रहेंगे तो शायद कुछ उपाय हो सकता, यहाँ ज़्यादा खतरा है। और भीम तैयार हो गए, वे लोग गए, अवसर पा करके वे खुद ही आग लगा दिए। संजोग की बात है, जाड़ा का दिन था, वे लोग ध्यान नहीं दिए, बाहर नहीं देखे, बाहर बरामदे में एक भिलनी अपने पुत्रों के साथ सोई थी, वो अपने पुत्रों के साथ जल गई। और सब जगह हल्ला हुआ, लेकिन वास्तव में पांडव लोग तो जले नहीं थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि ददाह जला दिए। उसका कारण यह है कि जलाने की पूरी तैयारी किए थे और उन पर जलाने का पाप लगा, उसको जलाना ही माना जाएगा। और कई एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, यदा सभायाम कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शम सुतकर्म गर्यम, धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी का अपमान कर रहे थे, कितना निंदित कार्य कर रहे थे, लेकिन न बारयामास, धृतराष्ट्र मना नहीं किए। द्रौपदी का वर्णन कर रहे हैं कि स्वाश्रय हरंत्या कुछ कुंकुमानी, द्रौपदी इतना विलाप कर रही थी, इतना रो रही थी कि स्वाश्रय अश्रु से कुछ कुंकुम, जो उसके स्तनों पर कुमकुम था, उसको धो रही थी। सुखदेव गोस्वामी ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि स्वाश्रय हरंत्या कुछ कुंकुमानी, अश्रु से अस्तन के कुमकुम को धो रही थी। किसके कुमकुम को धो रही थी या खोले नहीं है, तो दोनों अर्थ घटित होगा। एक अर्थ में द्रौपदी इतना विलाप कर रही थी, इतने आंसू निकल रहे थे कि उसके अस्तन के कुमकुम धुल रहे थे, या दूसरा अर्थ करेंगे कि द्रौपदी इतना विलाप कर रही थी कि उसके अश्रु का प्रभाव हुआ कि शत्रु पक्ष के स्त्रियों का कुमकुम धुल रहा था। ये साहित्य की भाषा है। द्रौपदी के अपमान के चलते यह निश्चित हो गया कि शत्रुओं को अब मरना है, विपक्ष को मरना है, और मरने का अर्थ है कि अब उनकी पत्नियां अपने कुमकुम को धोएंगी, अपने बाल को खोलेंगी। तो इस अर्थ में भी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि स्वाश्रय हरंत्या कुचकुम कुमानी, वो इतना विलाप कर रही थी कि शत्रुओं के स्त्रियों के, विपक्ष के स्त्रियों के कुमकुम धूल रहे थे। और दूसरे जगह इसका प्रमाण भी है, स्पष्ट कहा गया है कि कचस्पर्श छतायुसह, जेव ही द्रौपदी का केशाकर्षण किए, उसके बाल को पकड़ करके खींचे, तो उस स्त्री के अपमान का यह प्रभाव हुआ कि छतायुसह उनकी आयु छीण हो गई। देखिए आप लोग प्रारब्ध के विषय में पढ़ते हैं कि यह शरीर प्रारब्ध का फल है, और ऐसी मान्यता है कि शरीर मिलता है तो इसी के साथ धन आयु और कई एक चीज का निर्धारण भी हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के छठे दिन तो ब्रह्मा जी ललाट पर भी लिख देते हैं, कुछ लोग पढ़ भी लेते हैं, जिसको ब्राह्मी लिपि का ज्ञान है, ब्रह्मा जी के लिपि का ज्ञान है, वे लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग तो नहीं पढ़ पाते हैं। जिस लिपि का ज्ञान होगा उसी को व्यक्ति पढ़ पाएगा। हम लोग तो हिंदी देवनागरी पढ़ लेते हैं, रोमन लिपि पढ़ लेते हैं, या बंगाक्षर पढ़ लेंगे, अब वही कन्नड़ में कोई लिख दे, तमिल में लिख दे, उसी को नहीं पढ़ पाएंगे। और ब्रह्मा जी अपने लिपि में लिख देते हैं ललाट पर, पढ़ने वाले ज्योतिष के जानकार में पढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि व्यक्ति बहुत भारी पाप करता है, बहुत भारी दुष्कर्म कर दिया, तो लिखी हुई आयु भी घट जाती है। बहुत बड़ा उपकार कर दिया, बहुत पुण्य का कार्य कर दिया, तो आई हुई मृत्यु भी टल जाती है। और द्रौपदी का अपमान इतना जघन्य कर्म था कि कह रहे हैं कि कचस्पर्श छतायुस, उसके अपमान के चलते कौरवों की आयु छीण हो गई। वो कह रहे हैं कि द्रौपदी का जब ऐसे अपमान हो रहा था, और भी कई एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं, रहे कि अंततः जब भगवान प्रवचन किए, संधि दूत बन करके जाए गए, और उनकी बात अमृत की समान थी, लेकिन दुर्योधन उसको स्वीकार नहीं किया। और धृतराष्ट्र एक तरह से उसी का समर्थन किए। जब विदुर जी नहीं, जब भगवान संधि दूत बन करके गए और धृतराष्ट्र बात नहीं माना, भगवान का एक तरह से अपमान किया गया, वो भगवान भी चैलेंज दे करके, चुनौती दे करके निकल गए। और भगवान के विश्वरूप को देख करके कौरव पक्ष भयभीत हो गया, धृतराष्ट्र खास करके ये सब बात सुन करके भगवान के बहुत भयभीत हो गए। और कि यदो पहुता भवनो प्रविष्ट, पहले तो विदुर जी धृतराष्ट्र के पास जाते थे, मंत्रणा देते थे, लेकिन जब कई के जघन्य घटनाएं हो गई तो जाना छोड़ दिए। लेकिन धृतराष्ट्र जब भगवान की बात से भयभीत हो गया तो यदो पहुत फिर विदुर जी को बुलाया और मंत्राय पृष्ट, बुलाया, बड़े भाई हैं बुला रहे हैं तो चले गए। लेकिन जब विदुर धृतराष्ट्र पूछे कि कृष्ण ऐसे कह करके चले गए, हमें क्या करना चाहिए, तब विदुर जी स्पष्ट शब्द में कहे कि देखिए कृष्ण की स्थिति पर विचार कीजिए, वे भगवान हैं, द्वारका में हैं, पांडवों को अपना मान रहे हैं, इस स्थिति में बस एक विकल्प है कि आधा राज्य दे दीजिए, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो किसी प्रकार से मंगल नहीं। विदुर जी बहुत सुंदर शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, कई एक श्लोकों में धृतराष्ट्र को सलाह दिए। विदुर जी की बात अमृत के समान थी, लेकिन दुर्योधन को बहुत क्रोध आया, बहुत उसको क्रोध आया, और वो कहने लगा कौन इसको बुलाया है, इसको जल्दी सभा से निकालो। और उसको ऑर्डर किया कि इसको मारते हुए निकालो या कपड़ा लता छीन करके निकालो। विदुर जी चले गए, अपने से ही चले गए, निकल गए। लेकिन बहुत दिन के बाद यही कथा सुन करके, प्राचीन बरही की कथा सुन करके, वे फिर धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए आए। तो धृतराष्ट्र से कई एक बात कह करके सीधे कहे कि राजन निर्गम्यताम से ग्रम पश्येदम भयम आगतम। अरे अपने मृत्यु को पर विचार कीजिए, अब मृत्यु नजदीक है, जल्दी आप निकल जाइए, घर से निकल जाइए। धृतराष्ट्र कह सकते हैं भाई मृत्यु नजदीक है तो कुछ उपाय करना चाहिए, ये क्या बुद्धि दे रहे हो कि घर से निकल जाए, कुछ उपाय करना चाहिए ना। विदुर जी कहते हैं कि प्रतिक्रिया न जस्य है कुतश्चित कर हिचित प्रभो। ये मृत्यु का उपाय आज तक नहीं बनाया गया है, इसका उपाय आप नहीं कर सकते। किसी भी कोई भी स्थान हो, कोई भी समय हो, मृत्यु का उपाय नहीं कर सकते, उससे नहीं बच सकते। तो यहां भी नारद जी कथा करते हुए कह रहे हैं पुरंजन के विषय में कि जब काल कन्या आक्रमण की तो दुरंत चिंता मापन न लेभे तत् प्रतिक्रिया। वो चिंता में तो बहुत पड़ा लेकिन अब कोई उसका उपाय उसको नहीं मिला। अब कोई उपाय नहीं है, वो बाध्य है शरीर को छोड़ने के लिए। तो आगे के दो श्लोकों में हम लोगों का श्लोक है और एक आगे का श्लोक, इसमें पुरंजन के स्थिति का वर्णन किया गया है कि जब बुढ़ापा उसको आक्रांत कर लिया तो अब उसकी एक गति नहीं चली और बाध्य होकर के उसको शरीर छोड़ना पड़ा। हम लोगों के श्लोक में कह रहे हैं कि कामान अभिलसन दीनो, और बुढ़ापा के चलते शरीर के दृष्टि से भी दीन हो गया और कामान अभिलसन यात यामाश्च कन्या। वो काल का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब भोग का रस समाप्त हो गया। जैसे कोई स्वादिष्ट पदार्थ है और बासी हो जाता है, बहुत दिन रह गया तो उसका टेस्ट फीका हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो काल के प्रभाव से भी ऐसा हो जाता है। एक तो वस्तु पर प्रभाव पड़ता है काल का, उससे भी हो जाता है, और शरीर पर काल के प्रभाव से भी ऐसा हो जाता है। जब बुढ़ापा आ जाती है तो अब पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि अब बहुत टेस्ट नहीं ले सकते, बहुत मिठाई नहीं खा सकते, बहुत पकौड़ी इत्यादि नहीं खा सकते। तो कह रहे हैं कि यात या मांस, अब भोग का रस तो समाप्त हो गया लेकिन अभिलाषा नहीं समाप्त हुई। कामान अभिलसन, उन वस्तुओं की चाह कर रहा था, और विगतात्मक गति स्नेह, दूसरी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि अब ममता कुलह पुत्र परिवार में पढ़ करके साधन भजन किया नहीं तो विगतात्मक गति, अब जो परलोक है अच्छा होना चाहिए वो भी हाथ से निकल गया, परलोक के लिए कुछ किया नहीं। और कह रहे हैं कि विगत स्नेह, अब बुढ़ापा का यह प्रभाव हुआ कि जो परिवार के लोग थे उनका भी स्नेह समाप्त हो गया। यह बिल्कुल नग्न सत्य है कि जब व्यक्ति अति वृद्ध हो जाता है तो परिवार के लोगों का स्नेह भी कम हो जाता है। वो तो कर्तव्य बुद्धि से या अपने बदनामी के भय से थोड़ी थोड़ी सेवा कर देते हैं, स्नेह कम हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि विगतात्मक गति स्नेह, परलोक भी हाथ से निकल गया, अब कुछ कर नहीं सकते, और स्नेह भी समाप्त हो गया। लेकिन पुत्र दारांश लालयन, लेकिन फिर भी अपने पत्नी और पुत्र में आसक्त था, उनको उनका लालन कर रहा था, उनके पोषण के विषय में चिंतित था। तो यहाँ संक्षेप में हम लोग पुरंजन के मूर्खता के विषय में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। देखिए कह रहे हैं कि यात यामन, अब भोग में रस नहीं है, भोग नहीं सकता, लेकिन फिर भी कामन अभिलसन, उसकी कामना मन से नहीं गई और अभिलाषा कर रहा है भोग की। और परिवार के सदस्यों का, पुत्रों का, पत्नी का स्नेह समाप्त हो गया है लेकिन फिर भी उनके लालन पालन की चिंता में। अपुरंजन अज्ञान के स्थिति में है और लालन पालन के चिंता में ही पड़ा रहा, लेकिन उसको इस शरीर को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। और शरीर त्याग करने के लिए वह क्या उपक्रम किया, कैसे शरीर का त्याग किया, क्या सोच रहा था, इस विषय में हम लोग आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।